नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। शांति और संवाद के प्रति भारत के समर्पण की सराहना की। अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने संबंधी नोटिस जारी किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आज दोपहर कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा और इंग्लैंड में आइल ऑफ वाइट पर प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने शांति और संवाद के प्रति भारत के समर्पण की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध को गरिमापूर्ण और स्थायी शांति के साथ समाप्त करने की दिशा में यूक्रेन भारत के निरंतर सहयोग की आशा करता है। ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी का एक पत्र भी साझा किया जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद किया और यूक्रेन के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। भारत और फिजी ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के बीच वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। वार्ता के बाद श्री मोदी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया।
हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री राबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरिटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं।
बाद में एक प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय में दक्षिण मामलों की सचिव नीना मल्होत्रा ने बताया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार हुआ।
The talks covered the entire gamut of bilateral relations, including political cooperation, high-level engagements, trade, agriculture, education, healthcare, mobility, defense, capacity building, and people-to-people ties. The two leaders also shared the perspective on regional and global issues, including on multilateral cooperation.
फिजी के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। श्री राबुका ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारत और अल्जीरिया ने कल द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अल्जीरिया की यात्रा के दौरान दोनों सेनाओं ने सहयोग को बढ़ाने, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर दृष्टिकोण साझा करने और रक्षा औद्योगिक सहयोग के अवसर तलाशने पर सहमति जताई। अपनी यात्रा के दौरान सेना प्रमुख अल्जीरिया के शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। नया शुल्क कल से प्रभावी होगा। एक रिपोर्ट।
ये नोटिस अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के जरिए गृह विभाग से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ये शुल्क 6 अगस्त को हस्ताक्षरित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को लागू करता है। ये शुल्क नोटिस के अनुलग्नक में सूचीबद्ध व्यापक भारतीय उत्पादों पर लागू होगा। इस वर्ष अगस्त महीने में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया। इस कारण कुल शुल्क बढ़कर 50% हो गया है। भारत ने तथा कथित दूसरे शुल्क को अनुचित, न्यायविहीन और तर्कहीन बताया है। भारत ने कहा कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो बेहतर होगा वही करेगा। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI ने आज टेक्सास स्थित अमरीकी संघीय अदालत में एप्पल और चैट GPT निर्माता ओपन AI के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उन पर AI उद्योग में प्रतिस्पर्धा को दबाने की अवैध साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। मुकदमे के अनुसार एप्पल और ओपन AI ने अपना एकाधिकार बनाए रखने और एक्स और XAI जैसे नव प्रवर्तकों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकने के लिए बाजारों को बंद कर दिया है। दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले में 5 पत्रकार समेत 20 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के पास एक इजरायली हमले में 6 पत्रकारों के मारे जाने के 2 हफ्ते बाद हुई है। पत्रकारों की सुरक्षा समिति के अनुसार इजरायल हमास संघर्ष मीडिया कर्मियों के लिए सबसे खूनी संघर्षों में से एक रहा है। 22 महीने से चल रहे इस संघर्ष में गाजा में कुल 192 पत्रकार मारे गए हैं। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस घटना को एक दुखद घटना बताते हुए कहा कि देश पत्रकारों और चिकित्सा कर्मचारियों के काम को महत्व देता है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आज कोलंबो की एक अदालत में पेश किया जाएगा। वे श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 26 अगस्त तक हिरासत में रखा गया था। डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें पहले जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में नेशनल हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
श्री विक्रमसिंघे को 22 अगस्त को आपराधिक जांच विभाग ने सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये मामला सितंबर 2023 में ब्रिटेन की यात्रा से संबंधित है, जहां वे और उनकी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे वॉल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय में एक समारोह में शामिल हुए थे। ये यात्रा हवाना से लौटते समय हुई, जहां उन्होंने G77 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि उनकी पत्नी ने अपना खर्च खुद उठाया और किसी भी सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया गया। श्रीलंका से अहमद मोइन फारूकी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
इंग्लैंड के आइल ऑफ वाइट में कल एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार जीवित बचे व्यक्ति को यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
भारत की मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कल स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने अगले वर्ष ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप रिकॉर्ड दर्ज करते हुए कुल 193 किलो वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में 84 और क्लीन एंड जर्क में 109 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा बृहस्पतिवार को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उन्हें ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन बेवर से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। नीरज चोपड़ा ने इस सत्र में अब तक 6 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 4 में खिताबी जीत दर्ज की। इस बीच पेरिस में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज पहले दौर में भारत के HS प्रणय का सामना फिनलैंड के जाओ किम उलरॉफ से होगा। कल लक्ष्य सेन विश्व के नंबर 1 चीन के शी यू की से हार गए। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 50 से ज्यादा पदक हासिल कर लिए हैं। महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में भवनीश मेहंदी रत्ता ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में मनु भाकर, ईशा सिंह और सिमरनप्रीत कौर ब्रार ने टीम वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत 29 स्वर्ण, 11 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित शीर्ष पर बना हुआ है।
और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। शांति और संवाद के प्रति भारत के समर्पण की सराहना की। अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने संबंधी नोटिस जारी किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे को आज कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा और इंग्लैंड में आइल ऑफ वाइट पर प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।